मुट्ठी में।
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 7 रात के 9, भारत में 9:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 12 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 111 अफवात हुई हैं, जो एक रोज के दौरान हलाकतों की अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 1,48,920 तक पहुंच गई है, जिनमें से 56,360 सेहतियाब हो चुके हैं। भारत में मुस्बत केसेस की तादाद 3,43,000 से बढ़ गई है और मजमूई अमवाद 10,000 के करीब हैं। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 4,38,000 से बढ़ गई है। कुल केसेस 81 लाख हो गए हैं, जबकि 42 लाख के करीब अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया भर में मोहलिक वायरस से अमवात का तनासुब मुसलसल कम हो रहा है। एडोमीटर्स का कहना है कि बीमार और हलाक होने वालों का तनासुब अब घटकर 91 और 9 हो गया है। रूस में कोरोना के मरीजों की तादाद 5.5 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिका में मुस्बत केसेस की तादाद 21,81,000 से बढ़ गई है। कुल अमवात 1,18,000 से ज्यादा हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप आज बंगल के रोज एक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर रहे हैं, जिसके तहत पुलिस के निजाम में कुछ इसलाहत करना मुमकिन हो जाएगा। गुज़श्ता रोज पीर को एक आला सरकारी अहदेदार ने रिपोर्टरों से बात करते हुए बताया कि हुक्मनामे का बुनियादी हिस्सा पुलिस अफसरों को सूरतेहाल की कशीदगी को कम करने के तरीक़ेकार और ताकत के इस्तेमाल के मेयार के बारे में तरबियत फराहम करने से मुतालिक है। दूसरे हिस्से में गैर मुतशद्दिद सूरतेहाल से निपटने के लिए पुलिस अफसरों को समाजी कारकुनों के साथ इश्तराक की तरगीब देना शामिल है, जिसमें खास तौर पर नफ्सियाती सूरतेहाल और नशा करने की आदत से मुतालिका मसाइल से निपटना शामिल है। पुलिस के निजाम में मजीद इसलाहात के बारे में अमरीकी कांग्रेस में गौर किया जा रहा है। सेनेट की जुडिशरी कमेटी आज मंगल के रोज अपनी समाअत के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरी हकूक के एहलकारों के बयानात सुनेगी। सेनेट में अक्सरियती जमात रिपब्लिकन पार्टी के अराकीन इस बारे में अलग तजावीज का एक पैकेज तैयार कर रहे हैं, जिसमें जेरे हिरासत अफराद का गला दबाकर सांस रोकने पर पाबंदी और पुलिस के कैमरों का इस्तेमाल बढ़ाना भी शामिल है। सेनेट में अक्सरियती रहनुमा मिच मैकोनल ने इस कानून साजी को कानून नाफिज करने वाले इदारों की इसलाह की एक संजीदा तजवीज करार दिया है। ताम सेनेट में अकलियती रहनुमा चक शूमर का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से तैयार करदा तजावीज जामे नहीं है और अब वक्त आ गया है कि इस बारे में दिलेराना और वसी तर अंदाज में तब्दीलियां अमल में लाई जाएं। उधर डेमोक्रेटिक अरकान की अक्सरियत के हामिल ऐवान नुमाइंदगान में इस बारे में एक अलग कानूनी मुसवदे पर राय शुमारी इस माह किसी वक्त होने का इम्कान है। अमरीका के महकमा इंसाफ ने विफाकी हुकूमत की जानिब से सजाए मौत पर 17 बरस बाद दोबारा अमल दरामद शुरू करने का ऐलान किया है। महकमा इंसाफ ने पीर को 4 मुजरिमान की सजाए मौत की तारीखें भी जारी कर दी हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि मुल्क में विफाक की तहवील में मौजूद कैदियों की सजाए मौत पर अमल दरामद 13 जुलाई से शुरू होगा। विफाक की तहवील में कैदियों को सजाए मौत देने का सिलसिला सन 2003 से मुअत्तल था। रवां साल अप्रैल में वॉशिंगटन की अपील कोर्ट ने जहर के इंजेक्शन के जरिए विफाकी मुजरिमान को सजाए मौत की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल विलियम बर्न ने हुक्म दिया था कि 4 मुजरिमान की सजाए मौत दोबारा शेड्यूल की जाए। विलियम बर्न ने अपने बयान में कहा था कि जालिमाना जराइम का निशाना बनने वाले मुतासरीन का हम पर यह कर्ज है। अटॉर्नी जनरल के हुक्म पर महकमा जेल ने 4 मुजरिमान की सजाए मौत 13 जुलाई से 28 अगस्त के दरमियान शेड्यूल कर दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस का बुहरान शुरू होने के बाद से 1,43,000 से ज्यादा कारोबार बंद हो चुके हैं। इनमें से 35% या लगभग 50,000 कारोबारों के दोबारा खुलने का इम्कान नहीं है, जिससे अंदाजा होता है कि इस बुहरान ने मुल्क भर में छोटे कारोबारों को किस तरह मुतासर किया है। ये डेटा अमरीकी कंपनी ने जारी किया है, जो कारोबारों के बारे में अवामी आरा को अपनी वेबसाइट और फोन ऐप पर शुमार शाया करती है। उसने इन कारोबारों को शुमार किया है जिनके मालिकान से 1 मार्च से 9 जून के दौरान बताया कि वो काम बंद कर चुके हैं। खबरें खत्म हुई।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ اس وقت دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی تعلیمی ادارے بند ہیں اور تمام تعلیم اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں آن لائن دی جا رہی ہے۔ اس آن لائن تعلیم کے انداز پر اور اس کی انتظامی صورتحال پر یونیورسٹیوں کے طالب علموں کی جانب سے اعتراضات اور احتجاج سامنے آیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ایجوکیشن کے دوران طالب علموں اور یونیورسٹیوں کو جن مسائل کا سامنا ہے اور ان سے نمٹنے کے لیے وہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کریں گے کچھ طالب علموں کی گفتگو کے ساتھ۔ سب سے پہلے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں یونیورسٹی آف سرگودا میں ماس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ، سیکنڈ سیمسٹر کی طالبہ غلام حفصہ سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت طالب علموں کو آن لائن ایجوکیشن میں کیا دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور وہ کس سلسلے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ السلام علیکم غلام حفصہ۔
وعلیکم السلام۔
حفصہ کچھ بتائیے کہ کیا اس وقت مسائل ہیں جو کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس فیس کر رہے ہیں جس وقت یہ وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں گھروں میں؟
سب سے پہلے یہ ہے کہ آن لائن ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے، یہ چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہوگی، بٹ کچھ چیزیں ہیں جو کہ واقعی اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ اسٹوڈنٹس کو پرابلم آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے کہ ہم لوگ کی بہت ساری ڈگریز ایسے ہیں کہ پروفیشنل ڈگریز ہیں جس میں پریکٹیکل اپروچ ہمارے پاس انکلوڈیڈ ہوتی ہے، کورسز ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ جس میں ہمیں پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے۔ ایک ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں جو فوٹوگرافی کے کورسز ہم لوگوں کے سلیبس میں ہوتے ہیں، ویڈیوگرافی کے ہوتے ہیں، ان کی سیٹنگس اور ان کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، ہم تھیوری تو پڑھ سکتے ہیں بٹ ہم لوگ ان کو پریکٹس نہیں کر سکتے آن لائن کلاسز میں، تو ایک بہت بڑا گیپ آ رہا ہے لرننگ میں اس وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو ایک ہمارے پاس لائک ایشو آ رہا ہے وہ ہے ٹیکنیکل اسسٹنس، لیک آف ٹیکنیکل اسسٹنس، کائنڈ آف کہ ہم لوگ ایک نیو موڈ میں شفٹ ہوئے فرام مینول ایجوکیشن، فرام ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ٹو آن لائن ایجوکیشن۔ ہمارے پاس پراپر ایپس، ہمارے پاس پراپر ایجوکیشنل آن لائن ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے، ہم ٹرائل ہٹ میتھڈ پہ چل رہے ہیں جس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو کافی پرابلم آ رہی ہے۔
اور خاص طور پر یہ ایک ایشو بھی جس پر اسٹوڈنٹس کچھ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ان سے وہ چارجز لیے جا رہے ہیں ان فیسلٹیز کے جو کہ یونیورسٹی ان کو نہیں دے رہی۔
دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کو اس ٹائم میں کمپنسیٹ کرنا چاہیے فی کے ایشو میں، کیونکہ لائک ہم لوگ اس ٹائم نہ ہم یونیورسٹی جا رہے ہیں، ہم نہ اس کو اویل کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس لائک جو باقی چارجز ہیں ایکسیپٹ ٹیوشن فی، ان کو اس وقت ختم کر دینا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی اس وقت سمجھنا چاہیے کہ جو ہمیں چارج کیا جا رہا ہے لائک ٹیوشن فی کے علاوہ، کہ ہم نہیں جا رہے، یونیورسٹی نہیں جا رہے، اس کے علاوہ کوارنٹائن چل رہا ہے، بزنسز بند ہو چکے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس افورڈ کر لیں گے یہ چیز کہ وہ دے بھی دیں گے اگر ایکسٹرا چارجز جو ویسے یوزلی کیے جاتے ہیں جو یونیورسٹی ڈیز میں جو کہ ایکسیپٹیبل بھی ہیں، جو کہ جسٹیفائیبل بھی ہیں، بٹ اس ٹائم میں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ وہ کچھ اسٹوڈنٹس افورڈ کر سکتے ہیں بٹ سارے اسٹوڈنٹس نہیں کر سکتے، بزنسز بند ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس تو شاید وہ ٹیوشن فی بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے، تو یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اس ٹائم پہ، اس مومنٹ پہ ان چیزوں کو تھوڑا سا کنسیڈر کرے اور اسٹوڈنٹس کو فی کے معاملے میں تھوڑا ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔
اور یہ جو مسئلہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی یہ خواہش ہے کہ ان کو بغیر امتحان کے پاس کر دیا جائے، کیا آپ بھی اس موقف کی حامل ہیں؟
میں اس موقف کے بالکل حامل تو نہیں ہوں، بٹ ایک کہہ لیں کہ ہمارے پاس ایویلویشن گیپ ضرور آ گیا ہے آن لائن ٹیسٹنگ سسٹم سے۔ ہم لوگ کو بہت اچھے سے ایک چیز کا آئیڈیا ہے کہ جب ہمارا موڈ آف ایگزامینیشن ٹریڈیشنل موڈ آف ایگزامینیشن ہے، اس میں ہم ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے ہم لوگ ایک فکس ٹائم میں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اس میں سے ہمیں ایویلویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک سارا لائک نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے کہ جو جو ہو رہا ہے۔ آن لائن سسٹم میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو پیپرز لائک ٹرم پیپر لکھ رہے ہیں، آپ ریسرچ پیپرز لکھ رہے ہیں، وائیواز لکھ رہے ہیں، اس کے اکارڈنگ بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ اسٹوڈنٹس اکٹھے بیٹھ کے آن لائن پیپر سالو کر رہے ہیں، اور کسی سے کہیں کہ پیپرز بنوانے کے، بہت ہمارے پاس جس طرح نائنتھ ٹینتھ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھے تو پریکٹیکل نوٹ بکس ہمیں بازار سے بنی ہوئی مل جاتی تھی، تو اس کا یہ پیپرز بھی بنوائے جا سکتے ہیں، بنوائے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایویلویشن گیپ آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ایگزامس کے پروموٹ کر دیں ہمیں، بٹ اس سسٹم کو ریکنسیڈر کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ جسٹیفائڈ مارکنگ ہو سکے اور جو اسٹوڈنٹ واقعی محنت کرے ان کو ان کا حق ملے۔
بے حد شکریہ غلام حفصہ، آپ سرگودا یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں ماس کمیونیکیشن کی، اور آپ نے بڑی تفصیل سے ان مسائل پر روشنی ڈالی جو اس وقت اسٹوڈنٹس کو درپیش ہیں اور جن کا کوئی نہ کوئی سولوشن آپ چاہتی ہیں کہ سامنے آنا چاہیے۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی پروگرام کے ساتھ، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں سرگودا یونیورسٹی میں انگلش کی ایک طالبہ جو ماسٹرز کر رہی ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں آن لائن ایجوکیشن کے دوران کن مسائل کا شکار ہیں، اور خاص طور پر فیس اور چارجز جو ان سے وصول کیے جا رہے ہیں اس بارے میں ان کی یونیورسٹی میں کیا صورتحال ہے اور وہ جنرلی اس بارے میں کیا سمجھتی ہیں. السلام علیکم نمرا نواز صاحبہ.
وعلیکم
السلام نمرا، کچھ بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت آن لائن ایجوکیشن کی، اور خاص طور پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو یہ شکایت کس طرح ہے کہ ان سے وہ چارجز لیے جا رہے ہیں جو وہ اویل نہیں کر رہے فیسلٹیز.
بالکل، سب سے پہلے تو اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ اینڈ ہارڈ ٹائم فار آل دی پیپل اکراس دی گلوب. سب ایک پریشر میں ہیں، اور لائک دے آر کلو لیس اینڈ سم پیپل آر یو نو فیلنگ لائک دے آر اسٹک ان دا مڈل آف نو ویئر. تو سب کے لیے یہ ایک انسرٹن کنڈیشن ہے، اور ایسی کنڈیشن پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. تو آبویسلی اس کا ہر سیکٹر پر، ہر پرسن پر ایک امپیکٹ، ایک ڈفرنٹ سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑ رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر اسٹوڈنٹس سفر کر رہے ہیں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بالکل اپنی ڈگری کے اختتام پر ہیں، جو کہ لاسٹ سیمسٹر اسٹوڈنٹس ہیں، فائنل ایئر اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو کچھ یو نو مہینے تک ڈگری مل جانی ہے، پھر انہوں نے جاب مارکیٹ میں جا کے اپلائی کرنا ہے. تو سب سے زیادہ وہ لوگ سفر کر رہے ہیں. میرے خیال سے جو سب سے بڑا مسئلہ آن لائن ایجوکیشن کو لے کر ہے، کیونکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ٹائم ہے اور انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، تو پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں دیکھا گیا ایسا سسٹم. تو سب سے بڑھ کر جو میری نظر میں مسئلہ ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، اور کنیکٹیویٹی ایشو کا ہے، جو کہ ایک آن گراؤنڈ ریالٹی پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بہت دور دراز علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں، جو کہ جن کے پاس اپنا ٹیکنالوجی گیجٹ نہیں ہے، انٹرنیٹ کے سگنلز نہیں ہیں، پیکیجز نہیں ہیں، ڈیوائسز نہیں ہیں، ایک ان کے پاس اپنا پرائیویٹ اسٹڈی ایریا نہیں ہے، جس سے آبویسلی ان کی موٹیویشن لیول، ان کا پازیٹیوٹی لیول، ان کی سینیٹی لوور ڈاؤن ہو رہی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا مسئلہ جو میری نظر میں ہے وہ ایک فیس کا ہے، کیونکہ سٹ ان کلاس جو ان پرسن کلاس ہوتی ہے، جس میں ون ٹو ون ٹیچر اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اس کلاس کا اور آن لائن کلاس کا آبویسلی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آن لائن کلاس از اے گڈ سبسٹیٹیوٹ، بٹ اٹ کین ناٹ بی اے پرماننٹ ریپلیسمنٹ فار دی سٹ ان پرسن کلاسز. تو آبویسلی فیسلٹیز نہیں ہیں ویسی. تو جہاں تک بات ہے چارجز کی، چارجز ویسے ہی لیے جا رہے ہیں جیسے کہ سٹ ان کلاس، یو نو پرسن ٹو پرسن کلاس رومس میں دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہی سارے چارجز ہیں، جس میں لائبریری کی فی ہے، جس میں ہاسٹل کی فیس ہے، جس میں ایگزامینیشن اور بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں، لائک دیئر از اے ہیوج لسٹ آف ویریس چارجز اینڈ فنڈز، اور جو کہ ایک بہت یو نو گرینڈ ٹوٹل بنا رہا ہے فار دا اسٹوڈنٹس. تو وہ ریسیٹس دی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور جیسے کہ پوری دنیا میں یہ کووڈ 19 کا ایشو ہے، اٹس ناٹ جسٹ پاکستان اور اٹس جسٹ ناٹ ون ٹو اور تھری کنٹریز، لائک اٹس بین اسپریڈنگ آل اکراس دی گلوب. تو سب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے انمپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے جابس نہیں ہیں، ان کی کاروبار ختم ہے یا کم ہے، تو آمدنی نہیں ہے، اور بہت ساری فیملیز فائنینشیل اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہیں. تو اس فائنینشیل کرائسس کا بھی ایک سائیکولوجیکل بہت امپیکٹ ہوتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ جن کو وی نیڈ ٹو ایڈریس، اور اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ فی کو، وہ سارے ایکسٹرا چارجز کو اسٹوڈنٹس کے لیے کٹ ڈاؤن یا ریلیف دے دینی چاہیے، جو کہ وہ یوز نہیں کر رہے رائٹ ایٹ دا مومنٹ، جس میں سب سے بڑھ کے ان کے ہاسٹل کے، لائبریری کے اور دوسرے چارجز ہیں، جسٹ या तो टोटल यू नो उसको खत्म कर दिया जाए या फिर उन एक्स्ट्रा चार्जेस को एटलीस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाए।
निम्रा, कुछ असातिज़ा का ये कहना है, कुछ जो इस मुजाहरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में ये कहना है कि ये इसलिए मुजाहरे इसलिए नहीं कर रहे कि फीसों का मसला है, बल्कि असल में, और वो ये कह रहे हैं कि इम्तहान लिए बगैर अगली क्लासों में चढ़ा दो, तो असल में ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इसलिए मुजाहरे कर रहे हैं कि ताकि उन्हें इम्तिहान ना देना पड़े, और उसकी जवाब में ये एक एक इशू ये भी साथ इन्होंने नथी कर दिया है। तो इसमें आप क्या समझती हैं, कहाँ तक सदाकत है?
बिल्कुल ठीक है। मेरे ऑब्जर्वेशन में और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जेन्युइनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स मैंने हाईलाइट भी किए, जैसे कि फार ऑफ प्लेसेस का मसला है, टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज गैजेट्स इन चीज़ों का मसला है। उसके अलावा एक बहुत बहुत कलील तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि वाकई ही इसको एज अ फन एक्टिविटी और वो एक साइट वे आउट ले रहे हैं, प्रमोशन हो जाएगी एंड दे डोंट नीड टू वर्क हार्ड और लाइक इट्स ईजी वे आउट फॉर देम प्रमोशन। लेकिन वो स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बहुत कम है और जेन्युइन इश्यूज मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें मेरे पर्सनल जानने वाले और बहुत सारे और भी लोगों के जो हैं वो इश्यूज हैं जो कि वो सोशल मीडिया पे फेसबुक के जरिए यूट्यूब के जरिए जो है वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि यूनिवर्सिटी एक ट्रांसक्रिप्टेड वे में एक डिटेल्ड फुली गाइडेड पॉलिसी जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करे कि इस तरीके से इस पहलू से वी आर गोइंग टू इवेल्युएट यू एंड असेस यू और इट्स गोइंग टू बी फुल प्रूफ एंड फेयरली मार्क्ड। तो इट्स द बेस्ट पॉलिसी इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। और अगर ऐसा नहीं है और ऐसा करने में असातिज़ा या यूनिवर्सिटीज या सिस्टम साथ नहीं दे रहा तो फिर प्रमोशन की तरफ प्रमोशन ही एक वाहिद हल बचता है इस सूरत हाल में।
तो प्रमोशन वैसे आप इसके हक में नहीं है कि प्रमोशन यूं ही हो जाए जब तक कि सिस्टम सही ना हो।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम छठी सातवीं मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है, वी आर प्रोफेशनल, वी आर यू नो वी आर लेकिन फॉर प्रोफेशनल डिग्रीज, और कुछ ही महीनों सालों बाद हमने प्रोफेशनल मार्केट में जाना है, लोगों से डील करना है, चीज़ों को डील करना है, ऑर्गेनाइजेशंस चलानी है, इदारे चलाने हैं, तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और वो सलाहियत होनी चाहिए, तो हमें एक फेयर प्रोसेस के थ्रू निकल कर आना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोसेस उतना उस तरह से टफ या उस तरह से फेयर नहीं है जिस तरह के आम सूरत हाल में होता था, तो उस अगर वो सब कुछ नहीं वैसा किया जा सकता तब प्रमोशन की तरफ देखा जाए। लाइक मेरे नजरिए में प्रमोशन को सबसे लास्ट बेस्ट ऑप्शन कंसिडर होना चाहिए।
तो इसकी एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि कुछ डिले हो जाए, इंतजार किया जाए कोविड के जाने का, तब
मेरे नजरिए से डिले इज लाइक डिनाइंग एवरीथिंग। आप नहीं पता, नो वन नोज व्हेन द सिचुएशन, व्हेन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस इज गोइंग टू एंड, इसका किसी को इल्म ही नहीं। बड़े से बड़े साइंसदान, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, दे ऑल आर क्लूलेस एंड हेल्पलेस इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। तो हम कोई एक एग्जैक्ट फिक्स्ड डेट टाइम पीरियड तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे इस सिचुएशन में, इस अनसर्टेन कंडीशन में। तो मेरे ख्याल से डिले इज डिनाइंग, वो जैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइंग। तो जितना आप चीजों को डिले करते जा रहे हो, यू आर जस्ट डिनाइंग द बेसिक फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो जितना जल्दी इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए तो उतना ही जल्दी स्टूडेंट्स के हक में और सबके हक में बेहतर होगा। जैसे मैं अपनी खुद की मिसाल दूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लास्ट सेमेस्टर, मेरी ऑनलाइन क्लास का सेशन कंप्लीट हो गया, मेरे मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, मेरे सेशनल्स हो गए, आई सबमिटेड माय असाइनमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, आई अटेंडेड लेक्चर्स, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग क्लूलेसली अबाउट द फाइनल डिसीजन ऑफ फाइनल एग्जाम्स कि वो कब होंगे, किस तरह से होंगे, क्योंकि ये सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, इदारों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए सब कुछ नया है। हम सब क्लूलेस हैं और मैं सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि 50 नंबर का मुझे एक फाइनल एग्जाम देना है, देन डिग्री विल बी इन माय हैंड। और वो 50 नंबर का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। और उसके अलावा ये है कि कुछ महीनों बाद जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, फर्दर हायर डिग्रीज के एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, एमफिल्स के, पीएचडीज के, स्कॉलरशिप्स के, जिसके लिए आपको अपने साथ फाइनल सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट लगाना जरूरी होती है। तो वो सब कुछ के लिए वी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यू नो सीनियर सेमेस्टर्स, लास्ट सेमेस्टर्स वुड बी इन एलिजिबल टू अप्लाई इवन। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैं समझती हूँ कि एड्रेस किया जाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल।
बेहद शुक्रिया निमरा नवाज, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप सरगोधा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हैं, आपने हमारी बातों के जवाब दिए और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाए, दुनिया तक पहुंचाए, आपका बेहद शुक्रिया।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ, और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की एक तालिबा जो मास्टर्स कर रही हैं, और उनसे पूछते हैं इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान किन मसाइल का शिकार हैं, और ख़ासतौर पर फीस और चार्जेस जो उनसे वसूल किए जा रहे हैं उस बारे में उनकी यूनिवर्सिटी में क्या सूरत हाल है और वो जनरली इस बारे में क्या समझती हैं। अस्सलाम वालेकुम निमरा नवाज साहिबा।
वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इट्स अ रियली डिफिकल्ट एंड हार्ड टाइम फॉर ऑल द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। सब एक प्रेशर में हैं और लाइक दे आर क्लूलेस एंड सम पीपल आर यू नो फीलिंग लाइक दे आर स्टक इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो सबके लिए ये एक अनसर्टेन कंडीशन है और ऐसी कंडीशन पहले कभी नहीं देखी गई। तो ऑब्वियसली इसका हर सेक्टर पर, हर पर्सन पर एक इम्पैक्ट, एक डिफरेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उसमें सबसे बढ़कर स्टूडेंट्स सफ़र कर रहे हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल अपनी डिग्री के इख्तिताम पर हैं, जो कि लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जिनको कुछ यू नो महीने तक डिग्री मिल जानी है, फिर उन्होंने जॉब मार्केट में जाके अप्लाई करना है, तो सबसे ज्यादा वो लोग सफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा मसला ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है और अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं देखा गया ऐसा सिस्टम। तो सबसे बढ़कर जो मेरी नजर में मसला है वो टेक्नोलॉजी का है और कनेक्टिविटी इशू का है, जो कि एक ऑन ग्राउंड रियलिटी पे एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं, जो कि जिनके पास अपना टेक्नोलॉजी गैजेट नहीं है, इंटरनेट के सिग्नल्स नहीं है, पैकेजेस नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, एक उनके पास अपना प्राइवेट स्टडी एरिया नहीं है, जिससे ऑब्वियसली उनकी मोटिवेशन लेवल, उनका पॉजिटिविटी लेवल, उनकी सेनिटी लोअर डाउन हो रही है। और इससे भी बढ़कर सबसे बड़ा मसला जो मेरी नज़र में है वो एक फीस का है, क्योंकि सिट इन क्लास जो इन पर्सन क्लास होती है, जिसमें 1-to-1 टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, उस क्लास का और ऑनलाइन क्लास का ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन नहीं है। ऑनलाइन क्लास इज अ गुड सब्स्टिट्यूट बट इट कैन नॉट बी अ परमानेंट रिप्लेसमेंट फॉर द सिट इन पर्सन क्लासेस। तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज नहीं है वैसी। जहाँ तक बात है चार्जेस की, चार्जेस वैसे ही लिए जा रहे हैं जैसे कि सिट इन क्लास यू नो पर्सन टू पर्सन क्लासरूम्स में दिए जाते हैं, और उसके अंदर वही सारे चार्जेस हैं जिसमें लाइब्रेरी की फी है, जिसमें हॉस्टल की फीस है, जिसमें एग्जामिनेशन और बहुत सारे फंड्स होते हैं, लाइक देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ वेरियस चार्जेस एंड फंड्स, और जो कि एक बहुत यू नो ग्रैंड टोटल बना रहा है फॉर द स्टूडेंट्स। तो वो रिसीट्स दी जा रही है स्टूडेंट्स को, और जैसे कि पूरी दुनिया में ये COVID-19 का इशू है, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान और इट्स जस्ट नॉट 1, 2 और 3 कंट्रीज, लाइक इट्स it's been spreading all across the globe. तो सब यही जानते हैं कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लोगों के जॉब्स नहीं है, उनकी कारोबार खत्म है या कम है, तो आमदनी नहीं है, और बहुत सारी फैमिलीज फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं. तो इस फाइनेंशियल क्राइसिस का भी एक साइकोलॉजिकल बहुत इम्पैक्ट होता है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि जिनको वी नीड टू एड्रेस, और उसमें सबसे बड़ा ये है कि फी को एटलीस्ट वो सारे एक्स्ट्रा चार्जेस को स्टूडेंट्स के लिए कट डाउन या रिलीफ दे देनी चाहिए जो कि वो यूज नहीं कर रहे राइट एट द मोमेंट, जिसमें सबसे बढ़ के उनके हॉस्टल के, लाइब्रेरी के और दूसरे चार्जेस हैं. जस्ट या तो टोटल यू नो उसको खत्म कर दिया जाए या फिर उन एक्स्ट्रा चार्जेस को एटलीस्ट एक्सक्लूड कर दिया जाए.
निम्रा, कुछ असातिज़ा का ये कहना है, कुछ जो इस मुजाहरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में ये कहना है कि ये इसलिए मुजाहरे इसलिए नहीं कर रहे कि फीसों का मसला है, बल्कि असल में, और वो ये कह रहे हैं कि इम्तहान लिए बगैर अगली क्लासों में चढ़ा दो, तो असल में ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इसलिए मुजाहरे कर रहे हैं कि ताकि उन्हें इम्तहान ना देना पड़े. और उसकी जवाब में ये एक इशू ये भी साथ इन्होंने नथी कर दिया है. तो इसमें आप क्या समझती हैं, कहाँ तक सदाकत है?
ऑब्जर्वेशन में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जेन्युइनली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और वो प्रॉब्लम्स मैंने हाईलाइट भी किए, जैसे कि फार ऑफ प्लेसेस का मसला है, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, गैजेट्स, इन चीज़ों का मसला है. उसके अलावा एक बहुत बहुत कलील तादाद है स्टूडेंट्स की जो कि वाकई ही इसको एज अ फन एक्टिविटी और वो एक साइड वे आउट ले रहे हैं, प्रमोशन हो जाएगी एंड दे डोंट नीड टू वर्क हार्ड और लाइक इट्स ईजी वे आउट फॉर देम प्रमोशन. लेकिन वो स्टूडेंट्स की तादाद बहुत बहुत कम है, और जेन्युइन इश्यूज मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें मेरे पर्सनल जानने वाले और बहुत सारे और भी लोगों के जो हैं वो इश्यूज हैं जो कि वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए जो है वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा रहे हैं. तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि यूनिवर्सिटी एक ट्रांसक्रिप्टेड वे में एक डिटेल्ड फुली गाइडेड पॉलिसी जो है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करे कि इस तरीके से, इस पहलू से वी आर गोइंग टू इवेल्युएट यू एंड असेस यू, और इट्स गोइंग टू बी फुल प्रूफ एंड फेयरली मार्क्ड. तो इट्स द बेस्ट पॉलिसी इन दिस टाइम क्राइसिस. और अगर ऐसा नहीं है और ऐसा करने में असातिज़ा या यूनिवर्सिटीज या सिस्टम साथ नहीं दे रहा, तो फिर प्रमोशन की तरफ, प्रमोशन ही एक वाहिद हल बचता है इस सूरत हाल में.
तो प्रमोशन वैसे आप इसके हक में नहीं है कि प्रमोशन यूं ही हो जाए जब तक कि सिस्टम सही ना हो.
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम छठी सातवीं मैट्रिक के स्टूडेंट नहीं है, वी आर प्रोफेशनल, वी आर यू नो वी आर लेकिन फॉर प्रोफेशनल डिग्रीज, और कुछ ही महीनों सालों बाद हमने प्रोफेशनल मार्केट में जाना है, लोगों से डील करना है, चीज़ों को डील करना है, ऑर्गेनाइजेशंस चलानी है, इदारे चलाने हैं, तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी और वो सलाहियत होनी चाहिए. तो हमें एक फेयर प्रोसेस के थ्रू निकल कर आना चाहिए. लेकिन अगर वो प्रोसेस उतना उस तरह से टफ या उस तरह से फेयर नहीं है जिस तरह के आम सूरत हाल में होता था, तो उस अगर वो सब कुछ नहीं वैसा किया जा सकता, तब प्रमोशन की तरफ देखा जाए. लाइक मेरे नजरिए में प्रमोशन को सबसे लास्ट बेस्ट ऑप्शन कंसिडर होना चाहिए.
तो इसकी एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि कुछ डिले हो जाए, इंतजार किया जाए कोविड के जाने का, तब
मेरे नजरिए से डिले इज लाइक डिनाइंग एवरीथिंग. आप को नहीं पता, नो वन नोज व्हेन दिस सिचुएशन, व्हेन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस इज गोइंग टू एंड, इसका किसी को इल्म ही नहीं. बड़े से बड़े साइंसदान, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़े मेडिकल स्पेशलिस्ट, दे ऑल आर क्लूलेस एंड हेल्पलेस इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस. तो हम कोई एक एग्जैक्ट फिक्स्ड डेट, टाइम पीरियड तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे इस सिचुएशन में, इस अनसर्टेन कंडीशन में. तो मेरे ख्याल से डिले इज डिनाइंग, वो जैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइंग. तो जितना आप चीजों को डिले करते जा रहे हो, यू आर जस्ट डिनाइंग द बेसिक फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. तो जितना जल्दी इस चीज को सॉर्ट आउट किया जाए तो उतना ही जल्दी स्टूडेंट्स के हक में और सबके हक में बेहतर होगा. जैसे मैं अपनी खुद की मिसाल दूं, आई एम द स्टूडेंट ऑफ लास्ट सेमेस्टर. मेरी ऑनलाइन क्लास का सेशन कंप्लीट हो गया, मेरे मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, मेरे सेशनल्स हो गए, आई सबमिटेड माय असाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, आई अटेंडेड लेक्चर्स. नाउ आई एम जस्ट वेटिंग क्लूलेसली अबाउट द फाइनल डिसीजन ऑफ फाइनल एग्जाम्स कि वो कब होंगे, किस तरह से होंगे, क्योंकि ये सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, इदारों के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए सब कुछ नया है. तो हम सब क्लूलेस हैं और मैं सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि 50 नंबर का मुझे एक फाइनल एग्जाम देना है, देन डिग्री विल बी इन माय हैंड. और वो 50 नंबर का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है. और उसके अलावा ये है कि कुछ महीनों बाद जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, फर्दर हायर डिग्रीज के एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, एमफिल्स के, पीएचडीज के, स्कॉलरशिप्स के, जिसके लिए आपको अपनी साथ फाइनल सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट लगाना जरूरी होती है. तो वो सब कुछ के लिए वी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ यू नो सीनियर सेमेस्टर्स, लास्ट सेमेस्टर्स वुड बी इन एलिजिबल टू अप्लाई इवन. तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैं समझती हूँ कि एड्रेस किया जाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल.
बेहद शुक्रिया निमरा नवाज, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. आप सरगोधा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में मास्टर्स कर रही हैं, आपने हमारी बातों के जवाब दिए और अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाए, दुनिया तक पहुंचाए, आपका बेहद शुक्रिया.
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu.
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ. हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में. ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को ये शिकायत हैं कि यूनिवर्सिटियां उनसे फीस ले रही हैं कैंपस के दौरान भी या कैंपस की सर्विसेज की भी, जबकि उनको वो कैंपस की सर्विसेज फराहम नहीं की जा रही. इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं जो वो सामने ला रहे हैं कि उनको जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें कुछ दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं. इस बारे में गुफ्तगू के लिए हमने इस वक्त प्रोग्राम में शामिल किया है NED यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर जनाब सरोज हशमत लोधी को, जो इस पर टेलीफोन पर हमारे साथ हैं. उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सरोज हशमत लोधी साहब.
अस्सलाम वालेकुम यास्मीन साहिबा, आप खैरियत से हैं?
मैं ठीक हूँ. तो बताइए कि ये मसला क्या दरपेश है. स्टूडेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटियाँ उनसे फीस ले रही हैं कैंपस की सर्विसेज की, जबकि उनको वो सर्विसेज अब दस्तयाब नहीं है. तो पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम पूछते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के दूसरे इश्यूज क्या हैं जो यूनिवर्सिटियों को इस वक्त दरपेश हैं. जी
देखिए, एक चीज हमारे सब में है कि पूरी दुनिया एक इंतहाई अनयूजुअल हालात से गुजर रही है, और ऐसे हालात में जाहिर है कि जो कंडीशन है वो बड़ी डिफरेंट है. ना किसी को दुनिया भर में इसका तजर्बा है और ना ही किसी के पास कोई सोल्यूशन है. अब जहाँ तक फीसों का सिलसिला है तो इसमें एक चीज अहम है कि NED यूनिवर्सिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अपनी फीस में कंसेशन का अनाउंसमेंट किया है और उसमें मुख्तलिफ तरह के हैं. एक तो ये कि हम 20% रिडक्शन दे रहे हैं बच्चों को, दूसरे ये कि जो हॉस्टल के बच्चे हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे सेमेस्टर में. फिर तो फीस के कॉम्पोनेंट्स होते हैं जैसे इंटरनेट चार्जेस हैं, वो हम वेव ऑफ कर रहे हैं. चूंकि किताबें ओवरड्यू हो गई हैं लाइब्रेरी की और जाहिर है कि कोई आ नहीं सकता, तो इस सिलसिले में जाहिर है बच्चों से कोई फाइन भी नहीं लिया जाएगा उनके. दिस इज बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल.
लेकिन ये जो स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं, नहीं ये कुछ स्टूडेंट जो शिकायत कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है?
थोड़ा सा जी देखिए, थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़े से इसमें हौसले की जरूरत है. गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो एटलीस्ट ये किया है कि उन्होंने बाकायदा कानून पास किया और वो कानून तमाम तालीमी इदारों पर लागू है और उसकी वजह से जाहिर हम पर लागू है. کہ ہم یہ کنسیشنز بچوں کو دیں. یہاں اس کے اس میں ایک چیز کی کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ظاہر ہے کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ فزیکل ریپلیسمنٹ تو ہو نہیں سکتی ہے, لیکن بھارت یونیورسٹی کے اخراجات ہیں, جن لوگوں کی تنخواہوں کا جو خرچہ ہے وہ سب سے بڑا ہے, اور عام طور پہ یونیورسٹی میں 50% سے 80% تک جو خرچہ ہے وہ گرانٹ ان ایڈ پہ آتا ہے, لیکن بڑی تعداد میں یونیورسٹی جو ہیں وہ 50% سے 60% تک جو خرچہ ہے وہ گرانٹ ان ایڈ آتا ہے, اور 50% سے 40% وہ اپنی سورسز سے جنریٹ کرتی ہے, اس میں سب سے بڑی سورس جو ہے وہ فیس ہے. تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ لوگوں کو تنخواہیں بھی دینی ہیں اور دیگر اخراجات ہیں, میڈیکل کے اخراجات وقت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں جو کہ امپلائیز کو ہمیں کور دینا ہوتا ہے, تو ہمارے اخراجات میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی ہے. تو ظاہر ہے کہ خرچہ کہیں سے تو پورا ہونا ہے, اب ظاہر ہے بچوں کا بھی ایک لحاظ سے, لیکن تھوڑا سا حوصلہ کریں, ہمت سے کام لیں, ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم شیور کہ آل دی ادر یونیورسٹیز ول کم اپ ود سم تھنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹس.
یعنی آپ وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں, جو احتجاج کر رہے ہیں, جو غریب اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ انتظار کریں؟
دیکھیے ایسا ہے کہ بچوں نے تھوڑا سا اوور ریئیکشن کر رہے ہیں میرے خیال میں, وجہ یہ کہ احتجاج سے مسئلہ حل ہوگا نہیں, بہت سے ایسے بچے ہوں گے کہ جن کے گھر کے گھریلو مسائل بھی ہوں گے, والدین کے انکم کے مسائل بھی ہوں گے, اور یونیورسٹیز اور حکومت ان سارے مسائل کو سمجھتی ہے, تو جیسے وہ اپنے گھر میں بھی تو احتجاج نہیں کر رہے کہ واپس کہیں کہ پیسے لے کر, تو اسی طرح ہمارا بھی مسئلہ ہے, اور آئی ایم شیور کہ اس ڈیفیکلٹ ٹائمز میں ہر یونیورسٹی کی خواہش یہی ہے کہ وہ بچوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر دے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کا کوئی احتجاج کریں, جس سے جو آلریڈی اساتذہ ہیں, یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن ہیں, وہ اس کو بخوبی سمجھتی ہیں, اور وہ آئی ایم شیور کہ دے آر ٹرائنگ دی لیول بیسٹ ٹو کم اپ ود ا ماڈل
تو یہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے اگر وہ ہاسٹل میں بچہ نہیں رہ رہا تو اس کو آپ ہاسٹل کی فیس یا بجلی کا بل اور جو دوسرے خرچے ہیں جو ہاسٹل کے رہنے کے دوران وہ دے رہا تھا وہ ان سے اب نہیں لیے جائیں گے؟
یونیورسٹی کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں, حالانکہ وہ کمرے ان بچوں کے نام پہ الاٹڈ ہیں, ان بچوں کے سامان بھی وہیں موجود ہیں, لیکن چونکہ وہ فزیکلی نہیں آ سکتے اور نہ ہی ہم اجازت دے رہے ہیں, تو پھر ان سے وہ پیسے چارج کرنا بھی چاہتی ہے, اچھا خاصا ایک وہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے فیس میں بھی ہم 20% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, انٹرنیٹ کی فیس بھی چارج نہیں کریں گے, جو بچے کیا کہتے ہیں جو لائبریری کی کتابیں ہیں اس پر بھی کوئی ایڈیشنل فائن چارج نہیں کریں گے, دو تین مہینے سے کتابیں اگر نہیں ہوئی ہیں تو ظاہر اوور ڈیو ہو جاتی ہے, تو وہ ظاہر وہ سب ویو آف کریں گے, جو میکسیمم پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. یہاں ایک چیز کی میں اور وضاحت کرتا ہوں کہ میجورٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی فیسیں بھی بہت زیادہ نہیں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں یقیناً فیسیں زیادہ ہیں, لیکن پبلک سیکٹر کیونکہ پریڈومیننٹلی گرانٹ ان ایڈ فرام پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹس پر انحصار ہوتا ہے, تو اس لیے فیسوں کا بھی بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتا, لیکن میں یہ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہی مالی مسائل کا شکار ہے, تو پاکستانی بچے بھی ہیں.
تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو آن لائن ایجوکیشن جاری ہے اس میں کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور اس کی کیا افادیت ہے, اور آئندہ اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رول ہوگا, کیا رول ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا یونیورسٹیوں کی سطح پر؟
یہ جو آن لائن سسٹم ہے یہ ہرگز بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا فزیکل انٹریکشن کا, لیکن اس ڈیفیکلٹ حالات میں ہمارے پاس آپشنز کیا تھے, تو ایک بڑا آپشن یہ ہے کہ ہم بچوں کو انگیج کریں, کیونکہ بچوں کا فارغ رہنا تین تین چار چار پانچ پانچ مہینے گاڈ نوز ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک, وہ گھروں میں ہے, اور میں نے جو دائیں بائیں میری ساری جو عمر ان جوان بچے بچیوں میں گزری ہے ان کا زیادہ تر وقت ساری رات جاگنے اور سارا دن سونے میں آج کل گزر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیزوں میں ہو سکتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم میں مناسب نہ ہو, تو ان بچوں کو ایک تو مصروف رکھنا ہوئی ہے. دوسری چیز یہ کہ مسائل تو ہیں لیکن ہم نے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ جو آن لائن سسٹم میں گئے وہ ہائبرڈ سسٹم ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز مور اور لیس ہائبرڈ سسٹم پہ جا رہی ہیں, جس میں ٹیچرز اپنا لیکچر اپلوڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل, اور پھر ونس ا ویک دے آر اویلیبل آن لائیو ٹو آنسر کوسچنز. और मुझे पता है यूरोप में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो कर रही हैं, यूएस में भी मोर और लेस यही सिस्टम हो रहा है, पाकिस्तान में हमें भी किया, हमने क्लासेस शुरू किए 1 जून से और वो जाहिर है ऑनलाइन सिस्टम पे जा रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक कनेक्टिविटी का ताल्लुक है, वो जाहिर है जो बच्चे, हमने पहले एक सर्वे किया था और उस सर्वे में हमने बच्चों से मालूम किया था कि कितने बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं या टैबलेट्स हैं या लैपटॉप्स हैं या कंप्यूटर्स हैं घर पे, तो पता ये चला हमारे पास कोई अंडर ग्रेजुएट स्ट्रेंथ जो है वो 9,500 है। 9,500 में से 8,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से 98% बच्चों ने अपनी अवेलेबिलिटी बताई किसी न किसी स्मार्ट डिवाइस की। वंस अगेन हमारे पास जो बच्चे हैं वो ज्यादातर कराची के रेजिडेंट्स हैं, ज्यादा तो हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। कुछ बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज में हैं, जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम पे जाने का मकसद है वो भी यही है कि बच्चे जब भी उनके पास लाइट हो और इंटरनेट कनेक्शन हो तो वो अपनी कन्वीनियंस से लेक्चर देख के डाउनलोड कर लें, इंस्टेड ऑफ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे क्लासरूम होगी उस वक्त लाइट है कि नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है, और फिर बाद में वो लेक्चर मिस हो जाए। तो वो रेडीली अवेलेबल है, वो अपनी कन्वीनियंस से दिन में रात में जब चाहे उसको देख सकते हैं और उसके बाद टीचर हफ्ते में एक दिन अवेलेबल होता है घंटे के उनकी क्वेरीज का आंसर कर। ये तो है उसका, इसके अलावा बजर है हमारा पोर्टल है, उसमें बच्चे सवाल भी भेज सकते हैं और भेज रहे हैं। Once again, ये टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा क्योंकि हम में से कोई टीचर भी एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन टीचिंग में। अच्छा, शुरू में तो हमने ये किया था कि हमने टीचर से कहा था कि वो अगर मुनासिब समझे तो यूनिवर्सिटी ही में आके लेक्चर रिकॉर्ड कराए क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज बेहतर है, लेकिन जो हालात है वो कोई बहुत अच्छे है नहीं, तो हमने टीचर्स को ये लिबर्टी दी है कि दे कैन डू इट फ्रॉम होम, मेकिंग श्योर के प्रॉपर प्रोटोकॉल इज फॉलोड।
अच्छा, अब बात करते हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी इस वक्त क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कोविड से रिलेटेड कर रही है।
अच्छा, देखिए इसमें हम 3-4 चीजों में इस वक्त इन्वॉल्व है। सबसे पहली तो चीज ये है कि मेरे कुलीग है डॉक्टर रियाजुद्दीन, उन्होंने एक वेंटिलेटर डिजाइन किया जो कि तय करता हुआ पहले में अप्रूव की, और वो जब तक स्तंभ तक जब तक के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उसको लाइसेंस न दे दे, और उसकी जाहिर एक स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल 8-10 दफा उनके मुख्तलिफ टेस्ट हुए, उसमें से क्लियर हो गए, एक फाइनल टेस्ट बाकी है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते में किसी वक्त वो टेस्ट होगा और उसके बाद चीजें जो है वो बड़ी खुशाइन लग रही है। हम We will be in a position to provide ventilators at a very nominal cost. हमें एक वेंटिलेटर कोई तकरीबन 5 लाख रुपए का approximately पड़ना है, और जाहिर है कि हमारी ख्वाहिश यही है कि इस मुश्किल घड़ी में जो मिनिमम पॉसिबल खर्चे में हम हुकूमत को या किसी को वो वेंटिलेटर प्रोवाइड कर सके, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी खिदमत होगी कौम की और मुल्क की।
तो कितने वेंटिलेटर, कितने 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 वेंटिलेटर्स फराहम कर सकेंगे, आपके पास है वो गुंजाइश कि आप वो तैयार करके दे सकें?
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा और हमारी काफी लोगों से इस सिलसिले में नेगोशिएशंस हो रही है। हमारे पास जाहिर फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि कम अज कम 20 वेंटिलेटर पर वीक हम बनाने की कैपेसिटी डेवलप कर लें, और ये यूं समझ लीजिए कि अगर 20 वेंटिलेटर एक वीक में है तो अगले 3-4 वीक में हम समझिए 50-100 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें हम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग डेटाबेस जो कि कोविड के और हमें डेवलप करके दिया है, जिसमें कोविड के पेशेंट्स का सारा डाटा जो है उस डेटाबेस में होता है और उस डेटाबेस से फिर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तक चला जाता है। और उसके अलावा तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि जो डाटा आ जाता है उसकी डाटा मॉडलिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ सिंध हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या होंगी, फ्यूचर स्ट्रेस ऑन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो फ्यूचर ग्रोथ है पेशेंट्स की या क्रिटिकल पेशेंट्स की, नीड फॉर वेंटिलेटर्स एंड अदर मेडिकल लाइफ सेविंग डिवाइसेज, तो उस पर सारी मॉडलिंग जो है वो हमारी एनईडी यूनिवर्सिटी तीन प्रोजेक्ट एक्टिवली इन्वॉल्व है। और चौथे प्रोजेक्ट का मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो क्योंकि कोविड की वजह से सिंध असेंबली का इजलास जो है वो आज रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट किया है और वो ऑनलाइन, तो उसको तमाम तक टेक्निकल सपोर्ट जो है NED यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है।
अच्छा, तो क्या अब आइंदा भी जो इजलास हैं सिंध असेंबली के वो ऑनलाइन ही हुआ करेंगे?
अब जो है वो ऐसा है कि 25% मैक्सिमम ऑफ 25% ऑफ द मेंबर्स विल बी अलाउड टू अटेंड सेशन इन पर्सन और बाकी 75% विल जॉइन द सेशन ऑनलाइन।
तो इस तरह अब ये आइंदा का यही शेड्यूल रहेगा, यही अंदाज रहेगा, और ये नहीं मालूम कि कब तक ये अंदाज चलेगा।
जी, जब तक की पेंडेमिक चल रही है, जो आज रेजोल्यूशन हुआ उसमें यही है कि जब तक की पेंडेमिक चल रही है और इमरजेंसी सिचुएशन है, इसी मोड में, हाइब्रिड मोड में असेंबली के इजलास हो।
तो और ये तमाम जो ऑनलाइन फैसिलिटी है ये आप लोग एनईडी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है?
जी जाहिर, उसका जो हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आईटी डिपार्टमेंट ने दिया है, लेकिन जाहिर पीछे जो टेक्निकल सपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, उसके एसओपीस बनाना है, मेंबर्स को कनेक्ट करके चेकिंग करना है, ये सब चीजें जो है हम लोग एनईडी यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट फ्रॉम द सिंध असेंबली सेक्रेटेरिएट एंड आईटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये कर रहे हैं।
तो डॉक्टर सरोज साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त आपकी जो यूनिवर्सिटी है एनईडी यूनिवर्सिटी, ये इनोवेशन जो रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड इनोवेशन है, एक तो आपने वेंटिलेटर की बात की, उस पर मजीद क्या क्या काम करने का इरादा रखती है?
देखिए, एचईसी जो है, जहां तक मेरे इल्म में, एचईसी रिसर्च को फंड करती है, डेवलपमेंट का फंड जाहिर है एचईसी के पास नहीं है। तो हमारे जहन में चीज है वो ये है कि जब हम एक प्रोटोटाइप को अप्रूव करा लेंगे इंशाल्लाह, तो जब प्रोडक्शन पे जाएंगे तो वी हैव टू बी इन पार्टनरशिप विद अ प्राइवेट कंपनी विच हैज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज।
ठीक,
डिजाइन हमारा होगा, क्वालिटी एश्योरेंस हमारी होगी, उसके बैक एंड पे सॉफ्टवेयर हमारा होगा, लेकिन असेंबली जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू। इसमें कुछ एक आध ऑर्गेनाइजेशन है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता भी, कि जो जिन्होंने कुछ अपनी कंपनीज के सीएसआर के थ्रू कुछ फंड एलोकेट किए हैं और उन्होंने कहा कि वो विदाउट प्रॉफिट हमें सपोर्ट करेंगे इन काइंड, जो हमें कंपोनेंट्स मंगाने होंगे वो हमें मंगा के देंगे और असेंबल वो करेंगे, दे विल नॉट ड्रॉप प्रॉफिट।
सही, तो जो एचईसी ने ये अनाउंस किया है कि हम जो भी कोविड से रिलेटेड इनोवेशन होगी उस पर सरमायाकारी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी सतह पर लेगी। बेहद शुक्रिया सरोज हशमत लोधी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर हैं और बड़ी तफसील से आपने जो इश्यूज इस वक्त सामने आ रहे हैं कोविड-19 के दौर में या कोविड-19 के हमले के दौरान, वबा के दौरान, ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से, और जो स्टूडेंट्स को मसाइल पेश आ रहे हैं, फीसों के मसाइल हैं और जो दूसरे मसाइल हैं उनके बारे में, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू,
आपका बहुत शुक्रिया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, आज के खसूसी प्रोग्राम के साथ। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों की सतह पर ऑनलाइन एजुकेशन की और वो मसाइल जो स्टूडेंट्स को पेश आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के हासिल करने में, और जो असातिज़ा को पेश आ रहे हैं अपनी टीचिंग के सिलसिले में, और जो इंतजामी मसाइल पेश आ रहे हैं उन पर भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के वाइस चांसलर जनाब इश्तियाक अहमद सरगोधा से टेलीफोन पर, उनको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में और उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक अहमद साहब।
सलाम, शुक्रिया।
इश्तियाक अहमद साहब, इससे पेशतर कि मैं आपसे मजीद तफसीलात पर जाऊँ, आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछूँ, शुरू करूँगी अपना इंटरव्यू उस मसले से जो कि आजकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सामने ला रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त जबकि वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो रास्तों पर जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं और वो फैसिलिटीज़ जो उनको हासिल नहीं हैं, जो उनको अवेल नहीं हो रही, उन पर उनको चार्ज किया जा रहा है। तो पहले तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है कि स्टूडेंट्स को चार्ज किया जा रहा है उन फैसिलिटीज़ के लिए जो उनको अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ऑनलाइन एजुकेशन में ज़ाहिर है कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, اور صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو یہ ایک چیلنج سامنے آیا، اور اس چیلنج کو ظاہر ہیڈ آن لینا تھا. اب کچھ انسٹیٹیوشنز نے اس کو ہیڈ آن لی اور اس میں بریک نہیں آیا اسٹڈیز کے اندر، باقیوں نے ابھی شروع کیا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک پروویژن آف ایجوکیشن ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ہماری حت المقدور کوشش ہوتی ہے کہ کوالٹی سفر نہ کرے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر چیلنجز ہیں. بالکل یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم آرگیو کریں کہ جی 100% کوالٹی مینٹین ہو رہی ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن یہ کہنا کہ یہ اس میں فیسلٹیز ہم آفر نہیں کر رہے، فیسلٹیز دیکھیں نا، وہ تو ایبسولوٹلی یعنی فری آف کاسٹ ہمیں مل گئی زوم کی. پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیجز لیے. جہاں تک انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا تعلق ہے وہ ریاستی ایشو ہے، اور اس میں پاکستان میں کمپیریٹیولی سپیکنگ جو اور کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا میں، ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہیں.
لیکن یہ جو ایشو ہے کہ جو بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں اور اس وقت وہ ہاسٹل کے کمروں میں نہیں رہ رہے، ان سے کیا کمروں کے چارجز لینا یا ان سے بجلی کے بل لینا یا ان سے ٹرانسپورٹ کے بل لینا یا لائبریری کے بل لینا جو کتابوں کے لیے وہ دیتے ہیں، وہ مناسب ہے؟
دیکھیں ہماری جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اور خاص طور پہ یونیورسٹی آف سرگودا، ہمارا تو ویسے بھی جو اپنا چارجز ہیں بڑے منیمل ہیں، بیکاز اسٹیٹ یونیورسٹی ہے تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کی طرح بیہیو نہیں کر سکتے. تو ہمارا جنرلی جو اپنا وہ ہے نا اسٹینڈرڈس وہ ہے. تو جو بریک اب بیچ میں آیا، ظاہر ہے کہ ایک ہمارا پیپرا رولز ہمیں ہمارا کنڈکٹ گورن کرتے ہیں، تو اگر فیس کے اندر بھی جو معافی ہے یا جو چیزیں ہیں وہ سنڈیکیٹ ڈیسائیڈ کرتی یا ہائر لیول گورنمنٹ کے اوپر ڈیسیژن ہوتا ہے. تو جب گورنمنٹ کی ڈائریکشنز ہمیں آئیں گی، اگر وہ کہیں کہ جی بالکل چارج ہی نہیں کرنا تو ہم چارج نہیں کریں گے. تو ہمارا پبلک انسٹیٹیوشنز کا پرائیویٹ اداروں سے بہت فرق ہے، بیکاز اوور آل ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے. تو جو ڈائریکشن وہاں سے آئے گی، اگر بھلا وہ کہے کہ جی فیس نہیں کرنی چارج تو ہم نہیں کریں گے، جو اکیڈیمک کنٹرول ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے. تو ایسی کوئی ابھی تک گورنمنٹ نے پالیسی فریم نہیں کی کہ کوئی ایکسیپشن ڈرا کی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم اپنے طور کے اوپر جو بھی، اب ظاہر ہے کہ اس سچویشن کے اندر خاص طور پہ چونکہ ایک معاشی کرائسس بھی ہے اور ہیلتھ کا کرائسس بھی ہے، اور اس سے فیملیز بھی بڑی ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں، تو ہم اپنا پہلے بھی ہمارا ایک فی کنسیشن کا یا اور کچھ تقریباً فل فی کنسیشن اور تھوڑا سا پارشل ریلیف، وہ ہمارا ٹرینڈ یہاں پہ تھا، اس میں میں نے تین ایک مہینے میں دیکھا ہے کہ کچھ زیادہ اس کے اندر اپلیکیشنز بھی آئی ہیں. اور ہمارا چونکہ جنرلی ایک کمیونٹی سروس کی ایک ٹریڈیشن ہے یونیورسٹی کا، اور ہم وین اٹ کمز ٹو اسٹوڈنٹس، تو اگر جہاں حت المقدور ہو نیڈ بیسڈ کے اوپر ہم ایکسیپشنز ڈرا کرتے رہتے ہیں.
لیکن وہ جو اسٹوڈنٹس کمروں میں نہیں ہیں، کیا آپ ان کے کمروں کے کرائے ان سے وصول کریں گے؟ سوال ان کا صرف یہی ہے.
ہاں وہ تو دیکھیں ایک میگر اماؤنٹ ہوتی ہے اپنا سپورٹس کی یا بکس کی یا لائبریری کی، وہ جو اس کا اپنا سیمسٹر کی وہ ڈیوز دیتے ہیں. تو سیمسٹر ڈیوز میں تو ابھی تک میرے خیال میں کوئی ایسی کنسیشن نہیں ہوئی. تو اگر وہ ہاسٹلز میں نہیں رہ رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کریں گے کہ آپ اپنا اس کو ایکسیپشن ڈرا کریں، خاص طور پہ جو دو تین مہینے یا چار مہینے کا پیک جو بن رہا ہے اپنا. بجلی کا بل بھی کوئی نہیں ہے اور بھی یوٹیلیٹیز، بالکل رہ ہی کوئی نہیں رہا. وہ تو ہماری جو اب نا ہمارے جو ہاسٹلز ہیں کم از کم ایگریکلچر کے اندر اور میڈیکل کے اندر وہ کوارنٹین فیسلٹیز بنے ہوئے ہیں کرنٹلی، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے. باقی جو مین کیمپس کے اندر ہے تو وہ ہم اپنا اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی کاسٹ، جب اسٹوڈنٹ وہاں پہ رہتا ہے نا جی، اس وقت بجلی کا بل، اب چونکہ رہ ہی نہیں رہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال میں کسی کچھ اور یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پہ یہ ایشوز ہیں، اسی کے لیے معاملہ یعنی اٹھایا. آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا ایشو ہے ہمارے کیس میں.
ٹھیک، تو آپ کے سرگودا یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو کہ دوسری کچھ یونیورسٹی.
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اگر اس طرح کا ایشو ہوا تو چونکہ ہم اسٹوڈنٹ فرینڈلی یونیورسٹی ہے تو ہم اس میں ایکسیپشن ڈرا کریں گے ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز، اور لیکن ہم دوسروں پہ پریویل نہیں کر سکتے.
तो ये बताइए कि अब ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं कि इस वक्त आपको एकदम से ऑनलाइन एजुकेशन देनी पड़ी, तो क्या आप उसके लिए पहले से तैयार थे या इस वक्त आप कुछ सीख चुके हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी ऑनलाइन एजुकेशन को अपने असातिज़ा के एतबार से, अपने स्टूडेंट्स के एतबार से?
देखिए, असल में लीडरशिप का जो टेस्ट आता है ना, वो आता है क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर। तो उसमें मेरी तो पर्सनल बिलीफ यही रही है हमेशा से कि असल में जो चैलेंज या क्राइसिस होता है ना, वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है। तो हमने राइट इन द बिगिनिंग, जब इन्होंने सेकंड वीक ऑफ मार्च लॉकडाउन डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, तो हमने डिसाइड किया इस पे, काफी अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने ये डिसाइड किया कि हम जो स्प्रिंग सेमेस्टर चल रहा था रनिंग, हम उसको ब्रेक नहीं देंगे, और वो डिपार्टमेंट्स जो के ऑनलाइन रेडी थे, फैकल्टी ऑनलाइन रेडी थी, तो हमने एक हफ्ते के अंदर उनको हमने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। साथ में हमने बाकी को अगले हफ्ते हमने सब फैकल्टी और डिपार्टमेंट्स को कर लिया। सो विद इन टू वीक्स वी वर ऑनलाइन, हमारा सेमेस्टर में ब्रेक नहीं आया। तकरीबन तीन हफ्ते हमने फिर एक्स्ट्रा भी बीच में लगाए, और हमने मई के अंदर तमाम हमने कोर्सेज पढ़ा लिए, तकरीबन 5,000 कोर्सेज थे। हमने स्टूडेंट्स को ऑप्शन दे दी कि जिनको इंटरनेट की एक्सेस नहीं है या स्लो स्पीड है, तो वो ये सेमेस्टर फ्रीज करा ले। जो उन्होंने फी पे की है, वो जाहिर है कि हम काउंट कर लेंगे अगले जब भी वो कोर्सेज लेंगे या सेमेस्टर समर में लगाए। हमें अच्छा ये हुआ कि वी वर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम, वो हमें अभी रियलाइज कर ले, बिकॉज अब जो बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने डिसाइड किया था कि जी नहीं, हम अपना बाद में करेंगे शुरू, बाय मिड जुलाई हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम अपना असेसमेंट करेंगे, एग्जामिनेशन भी लेंगे, और जाहिर है प्रैक्टिकल कोर्सेज के लिए डिफरेंट कुछ क्राइटेरिया हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो बल्क ऑफ कोर्सेज है उसमें असेसमेंट मॉड्यूल हमने इस तरह क्रिएट किया, और उसे हमने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ हमने इन कॉन्फिडेंस किया है वो कि हम इसको MCQs जो कि मोबाइल फोन के ऊपर ही हम कर सकेंगे, और प्लस एक अपना वाइवा वॉइस जो कि इंडिविजुअली टीचर जूम के थ्रू स्टूडेंट से लेगा। सो
इसमें इसमें नहीं, इसमें शफाफियत का तो चैलेंज आ सकता है ना कि
नहीं इस देखिए, हर चीज का एक कोई ना कोई हर चीज की सलूशन है। इस वक्त एक ऐप भी बना रहे हैं यूनिवर्सिटी के, कुछ मैंने एक टारगेटेड ड्यूटी लगाई हुई है। असेसमेंट एग्जामिनेशन इज अ वेरी रिस्की मैटर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करके हम थोड़ा सा एक ऐप बना रहे हैं कि कोशिश करें कि कोई चांसेस ऑफ चीटिंग वो हो ना सके।
और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें वैसे ही पास कर दो, इम्तिहान ना लो, कुछ कहते हैं
नहीं,
डिले करो।
ये देखो ना, ये असल में ये बात है ना, मतलब इस तरह हो नहीं सकता। मतलब हम मैंने वो भी वो जो ऑप्शन थी ओपन बुक एग्जाम, भाई इस इलाके में ट्रेडिशन नहीं है ओपन बुक। ओपन बुक वहां पे होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 20-25 किताबें पढ़ते हैं, इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो यहाँ पे आपके पास दो एक टेक्स्ट बुक्स है, आप रट्टा लगाते हो, मतलब इस तरह तो नहीं। हमने देखनी है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। वी नीड टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स कि जो हमें जब इंटरव्यू देने जाए किसी में डिसअपॉइंटमेंट ना हो कि भी किस इदारे से ये ग्रेजुएट होके आए। ठीक है ना, वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिव ग्रेजुएट्स, स्किल लेवल उनका स्किल सेट दे के हम निकाले, तो जाहिर है कि उसके अंदर हमारी कमिटमेंट होगी कि हम स्मूथली एक अपना उनको अपॉर्चुनिटी ऑफर करें। टीचर की कमिटमेंट है कि वो जो उसको एक टास्क मिला है कि भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या क्रिटिकल थिंकिंग को शार्प करने का, उसको वो बिल्कुल हाथुल्मकदूर पूरा करे। स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि इधर उधर भागे नहीं चीजों से, कोई मसला नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो उनको अपना बाकायदा कोलैबोरेट करना चाहिए हमारे साथ यूथ को, भाई इस चैलेंज को हम अबूर करें और हेल्प अस आउट। वो हमें हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि भाई उनके पास अभी बड़ा फारिग वक्त है, आराम से बैठ के किताबें पढ़े। पहले अगर दो पढ़ते थे तो 20 पढ़े, क्योंकि इसी अपॉर्चुनिटी से उनको फायदा उठाना चाहिए कि देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम एट होम टू फोकस ऑन स्टडीज एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम।
बेहद शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के, और आपने बड़ी तफसील से बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी इस वक्त जो ऑनलाइन एजुकेशन का चैलेंज है उससे कैसे निमट रही है, और अब उसके स्टूडेंट्स के इम्तिहानात के चैलेंज को भी आप उस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो भी मुनासिब तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से हल हो जाए। आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज का ये प्रोग्राम खत्म होता है। یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.